الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوم قيلا، إن لك في النهار سبحا طويلا، واذكر اسم ربك وتبتل إليه تبتيلا. رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو فاتخذه وكيلا. إلى الآخر. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. ربنا زدنا علما. تو ہم معرفت القرآن میں سورۃ المزمل کی تفسیر پڑھ رہے تھے، تو ہم تھے پیج نمبر 592 کے اوپر. پیج 592 صحیح، معرفت القرآن والیوم 8. تو یہ جو سورہ مزمل ہے، اس کی جو شان نزول تھا کیا تھا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے اوپر جب جبرائیل علیہ السلام اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی لے کر کے آئے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ایک موقع پر، بالکل شروع کے دن تھے، تو اس موقع پر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بالکل جبرائیل علیہ السلام کو ان کی اصل شکل میں دیکھا. ٹھیک ہے، بہت بڑے تھے اور ان کے 600 پر ہیں، یہ نبی علیہ السلام نے فرمایا 600 پر، لیکن ان کا جو ایک پر ہے، یعنی پر ہوتے ہیں نا رائٹ سائڈ پہ اور لیفٹ سائڈ پہ پر ہوتے ہیں، تو ان کا جو ایک پر ہے نا خالی، وہ پورا کا پورا جو ویسٹرن ہورائزن، بلکہ ہاں ویسٹرن ہورائزن یا ایسٹرن ہورائزن، مشرق کی پوری سمت وہ کور کر دیا اس پر نے، اتنا بڑا وہ پر تھا. اور دوسری طرف والا جو پر تھا، اس نے جو ہے وہ دوسری سمت کو جو ہے وہ پورا کا پورا کور کر دیا. ٹھیک ہے، گویا کہ ڈھانپ لیا جبرائیل علیہ السلام نے پورے کے پورے آسمان کو. نبی علیہ السلام جتنا آسمان دیکھ سکتے تھے نا، وہ سارا کا سارا آسمان جبرائیل علیہ السلام کے پروں سے ڈھانپ کیا، اتنے بڑے ان کے پر تھے. تو جب اس کیفیت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دیکھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر کپکپی طاری ہوئی، گھر تشریف لے آئے اور اپنی زوجہ محترمہ حضرت امہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ زملونی زملونی. تو اسی کے اوپر اللہ تعالیٰ نے محبت بھرا خطاب فرمایا، یا ایہا المزمل. ٹھیک ہے، کیونکہ زملونی فرمایا تھا، تو اسی لفظ کو جو ہے وہ تو یعنی اپنے آپ کو ڈھانپ لینے والے اس انداز میں اللہ تعالیٰ نے خطاب فرمایا. پھر آگے ایک حکم جو فرمایا، رات کو جاگنے کا حکم، تو یہ حکم جو تھا بڑا سخت حکم تھا، کیونکہ روزانہ بہت لمبے پیریڈ کے لیے نماز میں کھڑے ہو کر کے قرآن کی تلاوت کرنے کا حکم دیا جا رہا تھا. تو اس حکم سے پہلے جو ہے وہ اتنا محبوبانہ خطاب کیا کہ جیسے کہ کوئی اپنے بہت ہی قریبی تعلق رکھنے والے کو کسی یعنی بہت ہی پیار بھرے لہجے میں مخاطب کرے. ٹھیک ہے، کیونکہ آگے جو ہے وہ بہت مشکل ایک حکم دینا تھا. تو اس حکم کی ہی تفصیل جو ہے ابھی چل رہی ہے کہ اس حکم کا جو پہلا حصہ تھا نا، وہ تھا کہ کھڑے رہیں آپ نماز کے اندر اور قرآن کی تلاوت کریں. رتل القرآن ترتیلا، کہ تلاوت بھی ایسے کریں کہ ٹھہر ٹھہر کر کے ایک ایک لفظ کو صحیح صحیح پروننسیشن کے ساتھ آپ تلاوت کریں. ٹھیک ہے، تو یہ تھا پہلا حکم، رات میں کھڑے ہو کر کے تلاوت کرنے کا. اور پھر اسی کے بارے میں کچھ اور تفصیل آئی تھی کہ جی یہ جو تلاوت ہے، آپ کو اصل میں تیار کیا جا رہا ہے ایک قول ثقیل کے لیے، जो कि कुरान मजीद आपके कलब मुबारक पर जो नाजिल हो रहा है ना, ये एक बहुत ही भारी जिम्मेदारी है जो आपके ऊपर डाली जा रही है। इसके अंदर अहकाम है जो कि इंसान के नफ्स के ऊपर बहुत बोझल होते हैं, तो ये सारे अहकाम आपके ऊपर भी डाले जा रहे हैं, और इससे बढ़ करके जो आपके ऊपर एक एक्स्ट्रा हुक्म डाला जा रहा है वो ये है कि आपने इन अहकाम को आगे दुनिया तक भी पहुंचाना है। ठीक है, दावत तो तबलीग का काम भी आपके ऊपर फर्ज किया गया है, तो बहुत भारी हुक्म है जो आपके ऊपर डाला जा रहा है। इन्ना नाशियत अल्लैल हिया अशद्द वक्अन व अक्वम कीला, कि रात को जो उठना है ना वो इंसान के नफ्स के ऊपर बहुत यानी इंसान के नफ्स नफ्स को रोंदने वाला है। वती क्या कहते हैं, जिसमें कि किसी को रोंद दिया जाता है। ठीक है, तो इसी वजह से शरीयत के अंदर भी जो मियाँ बीवी का ताल्लुक होता है तो उसको भी वती करना कहते हैं। ठीक है, और किसी जमीन के ऊपर जब इंसान चलता है ना तो उसको भी जो है वो वती करना कहते हैं। तो ये जो अपने आप को इस तरह की मुशक्कत में डालना है, इससे क्या होता है कि इंसान के जो नफ्स है तो वो भी जो है ना वो रोंदा जाता है, यानी उसको भी जो है वो दबाया जाता है। तो ये बात हमने पिछली क्लास में पढ़ी थी, पेज नंबर 592 के पहले पैराग्राफ में, कि मतलब इसका ये था कि रात की नमाज नफ्स कुशी और नफ्स को कुचलने में बहुत मुईन है, यानी नफ्स को काबू रखने में और नाजायज ख्वाहिशात पर उड़ने से रोकने में नमाज तहज्जुद से बड़ी मदद मिलती है। ठीक है, लेकिन आखिरी बात हमने आपके सामने क्या करी थी वो ये थी कि जो हजरत ने फरमाया ना आखिरी पैराग्राफ के आखिरी लाइन के अंदर, वो क्या है कि एक मिनट, कि इब्ने जैद रज़ी अल्लाह अन्हु ने फरमाया कि मुराद ये है कि रात के वक्त नमाज के लिए उठना कल्ब निगाह कान और जुबान सब में बाहिमी मवाफिकत पैदा करने में अशद है, यानी बहुत ज्यादा मुअस्सर है। ठीक है, इस जुमले का क्या मतलब है, जरा गौर करें इस जुमले के ऊपर। इंसान का कल्ब उसकी जुबान उसकी अपनी निगाह है, राइट, अपनी अपनी आंखें जो हैं और उसके अपने कान। भाई ये सारे जो 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 चार चीजें हैं, कल्ब निगाह कान और जुबान, ये एक ही इंसान के अंदर है ना। ठीक है, ये एक ही इंसान की बात हो रही है कि उसके ये चार आज़ा हैं, तो इन चारों आज़ा के दरमियान मवाफिकत पैदा होना कि ये लोग जो है ना वो एक दूसरे के साथ वेल कोऑर्डिनेटेड हों। मुआफिकत का मतलब क्या होगा कि वेल कोऑर्डिनेटेड हों, कि जैसा कल्ब जो है वो हुक्म, क्योंकि कल्ब का काम क्या है, हुक्म देना, ये बादशाह है। ठीक है, और आंखें कान और जुबान ये रियाया हैं इसकी, रियाया समझते हैं ना, बादशाह की जो जो पॉपुलेस होती है, जो जो मुल्क के जो अवाम होते हैं उनको रियाया कहते हैं। तो कल्ब बादशाह है और निगाह कान और जुबान जो हैं वो रियाया हैं। ठीक है, तो क्या फरमा रहे हैं कि जो रात की नमाज होती है तो उससे क्या होता है कि इन चारों चीजों के दरमियान मवाफिकत पैदा हो जाती है। क्या मतलब, क्या वैसे मवाफिकत नहीं होती, क्या वैसे मवाफिकत नहीं होती, नहीं वैसे मवाफिकत नहीं होती। ठीक है, यानी ये कोई बाय डिफॉल्ट ऐसा नहीं होता कि किसी इंसान के अंदर उसके कल्ब में और उसकी निगाह कान और जुबान के दरमियान वेल कोऑर्डिनेशन हो। इस वेल कोऑर्डिनेशन को, इस मवाफिकत को पैदा करना पड़ता है। बात समझ में आ रही है, पैदा करना पड़ता है, ये बाय डिफॉल्ट यानी ये कोई पैदाइशी होती नहीं है। ठीक है, कि आपके पास ये मवाफिकत पहले से मौजूद हो, नहीं, ये पहले से मौजूद नहीं होती बल्कि ये खराब हो चुकी होती है। ये मवाफिकत जो है ना, ये जो मवाफिकत है ना, ये खराब हो चुकी होती है। ठीक है, ये डिसओरिएंटेड डिसओरिएंटेशन हो चुकी होती है। ठीक है, तो ये जो डिसओरिएंटेशन है इसको अगर हम जरा इलाज मुआलजे यानी डॉक्टरी जुबान में बोलें तो इसको क्या कहेंगे, ये डिसओरिएंटेशन ये एक नुक्स है, ये एक बीमारी है। ठीक है, ये डिसओरिएंटेशन कि कल्ब जो है वो हुक्म तो दे रहा है या कोशिश कर रहा है हुक्म देने की, लेकिन ना आंख उसकी उसका हुक्म मान रही है, ना कान उसके हुक्म मान रहे हैं, और ना जो है वो जुबान उसका हुक्म मान रही है। ठीक है, तो भाई इस मुल्क में क्या होगा, जिस मुल्क के अंदर बादशाह सलामत एक ऑर्डर पास कर देते हैं, ऑर्डिनेंस पास कर देते हैं, राइट, लेकिन जो वजीर साहब हैं, जो गवर्नर साहब हैं, वो बादशाह सलामत के हुक्म को जो है वो इग्नोर कर देते हैं। ठीक है, तो फिर उस मुल्क का क्या हशर होगा, उस मुल्क के अंदर अटर केओस, ठीक है ना, बिल्कुल जो है ना वो मुल्क जो है वो उसका हुलिया बिगड़ जाएगा, राइट। तो उसी तरीके से ना हमारे अपने वजूद का जो मुल्क है, अपने वजूद को अगर हम मुल्क कहें, तो इस मुल्क के अंदर जो बादशाह सलामत है वो तो कल्ब है, लेकिन हमारे बादशाह सलामत का हाल ये होता है कि जैसे आजकल की जो क्वीन एलिजबेथ साहिबा है ना, उनका हाल है, उनका कोई रोल ही नहीं है मुल्क के अंदर, वो तो महल के अंदर बैठी होती हैं, और जो है वो मिलने वाले आने वाले लोगों के साथ जो है वे मुलाकातें वगैरह कर लेती हैं और कुछ तस्वीरें वगैरह खिंचवा लेती हैं, लेकिन उनका हुक्म नहीं चलता मुल्क के अंदर। ठीक है, हुक्म किसका चलता है जी, ब्रिटिश पार्लियामेंट का हुक्म चलता है। ठीक है, तो ऐसे बादशाह सलामत का क्या करना है भाई, ये तो एक खाली एक सिंबॉलिक फिगर है ना, इस सिंबॉलिक फिगर से कोई फायदा नहीं है ना। ठीक है, तो ये जो है ना हमारे दिल में, हमारे वजूद के अंदर ऐसा क्यों होता है, इसलिए कि बादशाह सलामत जो होता है ना वो बहुत कमजोर होता है, बहुत कमजोर होता है, उसका हुक्म जो है वो अपने हुक्म को इन्फोर्स नहीं कर पा रहा होता अपनी कमजोरी की वजह से। ठीक है, तो इस वजह से ना इस सिचुएशन को इम्प्रूव करने की जरूरत पड़ती है, इस नुक्स को रिमूव करने की जरूरत पड़ती है, या इन अदर वर्ड्स ये जो बीमारी का शिकार है भाई, वो आपने कभी देखा होगा किसी शख्स को कि जो भेंगे होते हैं, भेंगे होते हैं ना, यानी वो देखना कहीं चाह रहे होते हैं लेकिन उनकी निगाहें जो है वो कहीं साइड पे लगी होती हैं। ठीक है, तो ये एक एक नुक्स है ना, ये एक बीमारी है ना। ठीक है, एक शख्स जो है वो अपने हाथ को उठाना चाह रहा है लेकिन उसका हाथ उठ नहीं पा रहा, तो ये उसकी बीमारी है। ठीक है, तो भाई इस बीमारी का इलाज करना पड़ेगा। ठीक है, तो इस वजह से ना ये जो जुमला है, ये जुमला बड़ा अहम है कि अगर यानी इंसान के अंदर जो ये बीमारी होती है, तहज्जुद की नमाज जो है उस बीमारी का इलाज करती है। कैसे इलाज करती है, कि नफ्स जो है ना वो इंसान के ऊपर गालिब आया होता है, इंसान के ऊपर गालिब आया हुआ होता है, और उसका जो कल्ब होता है वो मगलूब हुआ हुआ होता है, कल्ब का हुक्म नहीं चल रहा होता, हालांकि हुक्म जो है वो कल्ब का चलना चाहिए था, लेकिन कल्ब का हुक्म नहीं चल रहा होता बल्कि नफ्स का हुक्म चल रहा है। और नफ्स क्या चीज है, नफ्स जो है ना वो बादशाह नहीं है, बल्कि नफ्स जो है वो एक बागी ताकत है, हमारे वजूद के अंदर नफ्स एक बागी ताकत की हैसियत रखता है, एक जैसे रेबल ग्रुप है कोई। ठीक है, ये जो जैसे पाकिस्तान के अंदर ये है ना वो एंटी पाकिस्तान किस्म के जो ग्रुप बने हुए हैं जो कि खाना जंगी करते हैं, ठीक है, तो आप कहें कि जी वो नफ्स हैं, ठीक है, तो वो नफ्स जो है ना वो खाना जंगी करते हैं और वो जो है वो मुल्क के ऊपर हुक्म चलाने की कोशिश करते हैं, और बादशाह सलामत इतने कमजोर हैं, इतने कमजोर हैं कि उनका हुक्म जो है वो चल ही नहीं पा रहा। ठीक है, तो इसका इलाज करने की जरूरत पड़ती है। तो इसी वजह से आखिरी बात हमने आपको ये बताई थी कि ये जो इलाज है ना ये डॉक्टर के बगैर नहीं हो सकता, ये इलाज किताबों के जरिए से नहीं हो सकता, आप किताबें पढ़ती रहें और उसके अंदर जो है वो इलाज के तरीके लिखे हुए हों, तो उनके तरीकों को पढ़ पढ़ करके आप उनका इलाज अपना अपना इलाज जो है वो खुद करने की कोशिश करें, ये कोशिश जो है ना ये फेल हो जाती है। ठीक है, क्योंकि इलाज करने का तरीका ये है ही नहीं कि इंसान जिसको के ना इल्म है ना उसको कोई तजुर्बा है वो किताबें पढ़े और खुद से अपना इलाज करें, ये डॉक्टर के बगैर नहीं हो सकता। ठीक है, तो इसमें फिर उन्होंने बात क्या आखिर में क्या बात लिखी थी कि यानी इन अदर वर्ड्स कहने का मकसद ये है कि ये जितनी भी नफली इबादतें हैं ना, जैसे कि तहज्जुद है और दीगर इबादतें हैं, तो ये आपका यानी प्रॉब्लम का इलाज उस वक्त करेंगी कि जब आप इसको किसी डॉक्टर के मशवरे से करेंगे। ठीक है, और अगर हम मशवरे के बगैर करेंगे तो फिर फायदा नहीं होता, बल्कि कभी फायदा कम होता है या होता ही नहीं है, और अक्सर जो है वो नुकसान हो जाता है। ठीक है, जैसे दवाओं के साइड इफेक्ट्स हो जाते हैं, दवाएं जो होती हैं वो उल्टा असर कर जाती हैं। तो जब इस तरीके से इंसान प्रॉपरली इलाज करता है, अपना मुआलिज की निगरानी में इलाज करता है, तो उससे क्या फायदा हासिल होता है कि इन चारों चीजों के दरमियान मवाफिकत पैदा हो जाती है। ठीक है, और कल्ब का हुक्म जो है फिर आंख के ऊपर, कान के ऊपर, जुबान के ऊपर चलना शुरू हो जाता है। ठीक है, इसी को अल्लामा इकबाल ने एक बहुत खूबसूरत शेर के अंदर कहा था कि हजार खौफ हो लेकिन जुबां हो दिल की रफीक। हजार खौफ हो यानी लोग जो है वो आपको बहुत डराएं कि आप नेकी ना करें, आप गुनाहों से गुनाहों के अंदर मुब्तला हो जाएं। अगर आप नहीं गुनाहों में मुब्तला होंगे तो हम आपको बुरा भला कहेंगे, हम आपको जलील कहेंगे, हम आपको बैकवर्ड कहेंगे, हम आपको जो है वो दकियानूस कहेंगे। ठीक है, तो आपको खौफ लगा हुआ हो कि लोग मुझे क्या कहेंगे अगर मैंने गुनाहों के काम नहीं किए, अगर मैंने फुलानी पार्टी अटेंड नहीं करी। ठीक है, अपने बच्चे को जो है वो मैंने माइकल जैक्सन, तो खैर बहुत पुराना हो गया आजकल, जो भी क्या नाम है उसका, ये आजकल जो कॉन्सर्ट्स मुस्तकिल मिडिल ईस्ट के अंदर चल रहे हैं, अगर मैंने अपने बच्चे को कॉन्सर्ट्स में नहीं डाला और चलता फिरता ब्राउन अंग्रेज नहीं बनाया अगर मैंने अपने बच्चे को, तो लोग जो है ना वो मेरे बच्चे को यानी मजाक उड़ाएंगे मेरे बच्चे का, और लोग मुझे बुरा भला कहेंगे कि तुमने क्या कर दिया अपने बच्चे को, मैं तुम्हारा बच्चा बेचारा बेचारा कहेंगे तुम्हें भी और तुम्हारे बच्चे को, बल्कि तुम्हें तो क्या, तुम्हें तो जालिम कहेंगे और तुम्हारे बच्चे को जो है वो बेचारा कहेंगे। तो आजकल हमें ये वाले खौफ लगे हुए होते हैं, ठीक है, कि लोग क्या कहेंगे। सही है, लेकिन अल्लामा इकबाल क्या फरमाते हैं, हजार खौफ हो लेकिन जुबां हो दिल की रफीक, कि दिल जो है ना जो कि आपको सही रास्ते के ऊपर डालना चाहता है, आपकी जुबान जो है वो अपने दिल की बात माने, लोगों की बातों को इग्नोर कर दे, लोगों की बातों को एक कान से सुने और दूसरे कान से निकाल दे। हजार खौफ हो लेकिन जुबां हो दिल की रफीक, यही रहा है अजल से कलंदरों का तरीक। जो कलंदर होते हैं ना, फकीर कलंदर, अल्लाह ताला ने अपने बंदों को फकीर कहा है, तो हमें बनना है फकीर, हमें कलंदर बनना है। ठीक है, तो जो सही मानों में फकीर और कलंदर बन जाते हैं ना, उनका तरीक क्या होता है, उनका रास्ता क्या होता है, कि वो लोगों की परवाह नहीं करते, वला यखाफूना लौमत लाइमिन, कि ये मलामत करने वालों की मलामत का खौफ नहीं करते, उन सारे खौफों को जो है वो अपने जहन से निकाल देते हैं। ठीक है, तो ये कब होता है कि जब इंसान सुन्नत तरीके से कुरान के हुक्मों के ऊपर अमल करता है, तो उसके अंदर से ये खौफ निकल जाते हैं और फिर वो सही मानों में अपने रब का
हाँ
जो है ना बंदा बन जाता है, तब वो फकीर बनता है, तब वो कलंदर बनता है, जैसे कि कुरान ने फरमाया। ठीक है, ये जो फकीरी का लफ्ज है ना, ये हम तो इसको बिल्कुल ही कुछ और समझते हैं। एक दफा मुझे याद है कि अमेरिका के अंदर इस्लामिक कॉन्फ्रेंसिस वगैरह होती थी, बड़े बड़े जो है वो कन्वेंशन होते थे, तो उनमें एक बाजार भी लगता था जिसमें कि इस्लामिक प्रोडक्ट्स वगैरह जो है वो बहुत दूर दूर से लोग लेकर के आकर के बेचते थे, जैसे टी शर्ट्स बेच रहे हैं, तो किताबें बेच रहे हैं, तो फलानी चीजें बेच रहे हैं। तो हम भी वहां पर एक स्टॉल लगाया करते थे जिसमें हम हजरत जी की किताबें बेचा करते थे और उनकी सीडीज और कैसेट्स वगैरह बेचा करते थे। ठीक है, तो अब हजरत जी का तो आपको पता है, वो अपने नाम के साथ क्या लगाते हैं, फकीर, फकीर जुल्फिकार अहमद नक्शबंदी। ठीक है, तो उनकी हर किताब के ऊपर इसी तरीके से उनका नाम लिखा होता है, फकीर जुल्फिकार अहमद नक्शबंदी। तो एक पाकिस्तानी साहब है, ये पता नहीं पाकिस्तानी थे इंडियन थे, बहरहाल वो आए और आ करके ना उन्होंने जरा किताबों को उलटना पुलटना शुरू किया। मैं उनको देख रहा था, मैं खड़ा होता स्टॉल पे, हम अल्हम्दुलिल्लाह ये काम किया करते थे वहां पे, हजरत की किताबें बेचा करते थे और सीडीज, तो मैं उनको देखता रहा। तो जब उन्होंने किताब के सरवरक के ऊपर देखा ना कि फकीर जुल्फिकार अहमद नक्शबंदी, वो कहकहे लगा लगा के हंसना शुरू हो गए और हंसते रहे। मैं उनकी शक्ल देख रहा हूँ, उनको क्या हो गया, ये क्यों हंस रहे हैं, तो कहकहे लगा लगा के हंसने, और फिर उसके बाद जब चुप हुए ना, तो कहते हैं कि यहाँ पर तो यानी उधर भी फकीर, यानी किसी और बुक स्टॉल के ऊपर भी किसी ने फकीर का कुछ नाम लिख करके लगाया हुआ था। ठीक है, वो भी किसी सूफी बुक स्टोर से होकर के आए थे, तो वहां पर भी फकीर लिखा हुआ था, यहाँ पर भी फकीर लिखा हुआ है। ये लोग जो है वो ये फकीर लोगों यानी फकीर के लफ्ज के ऊपर उनको कहका आ रहा था। ठीक है, हंसी आ रही थी उसको, लेकिन अल्लाह अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह ने मेरी मदद फरमाई। मुझे याद आ गया कुरान की वो आयत कि भाई अल्लाह ताला तो कुरान के अंदर हमें फकीर कहते हैं, या अय्युहन्नास अंतुमुल फुकराउ इलल्लाह। ठीक है, तो फकीर के लफ्ज के ऊपर हंसने वाली कौन सी बात है इसके अंदर। तो फिर वो जरा चुप हो गए, उनको उनके उसका जवाब समझ में नहीं आया। तो बहरहाल, तो ये तरीका होता है कि कल्ब जो है वो मजबूत होता है, नफ्स कमजोर हो जाता है, तो फिर तमाम आजा के ऊपर कल्ब का हुक्म जारी हो जाता है। इसके बाद फरमाया हजरत इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया कि अशद्दु वतअन के मानी ये हैं कि कान और कल्ब में उस वक्त ज्यादा मुवाफ़िकत होती है कि रात का वक्त उमूमन कामों से फरागत और शोर व शुगब से निजात और सुकून का वक्त होता है। इस वक्त जो अल्फाज जुबान से निकलेंगे अपने कान भी उनको सुनेंगे और दिल भी हाजिर होगा। ठीक है, तो अब ये एक जाहिरी यानी कैफियत बता दी कि भाई चूंकि उस वक्त जो है वो नॉइज नहीं होती है, शोर व शोगम नहीं होता है, घर के लोग भी जो होते हैं वो सो रहे होते हैं, बच्चे तो जाहिर सो रहे होते हैं, तो उस वक्त जो है ना वो कॉन्सेंट्रेट करना और सही तरीके से नमाज पढ़ना जो होता है वो आसान होता है। और इवन अपने जुबान से पर यानी इंसान थोड़ा सा बुलंद आवाज, हत्ता कि औरत भी जो वो थोड़ा बुलंद आवाज में तिलावत कर सकती है क्योंकि कोई और सुनने वाला उस वक्त होता नहीं है। ठीक है, औरत की जो आवाज है ये सतर नहीं है। ठीक है, कुछ इबारतों से कुछ लोग जो है वो कंफ्यूज हो गए हैं, लेकिन हकीकत ये है कि औरत की आवाज जो है वो सतर नहीं है। ठीक है, लेकिन औरत की आवाज को नबी अल्लाह ताला ने जो है वो कंडीशंस के साथ इस्तेमाल करने का हुक्म दिया है। ठीक है, कि उसको जो है वो लुचदार ना बनाओ, अट्रैक्टिव ना बनाओ। तो जो गाना गाने का वाला मामला होता है तो उसके अंदर तो आवाज यानी गाना तो सुर के साथ होता है, तो वो तो हराम हो गया, औरत तो गा ही नहीं सकती। अजान जो है इसके अंदर भी जो है वो एक बहुत बुलंद आवाज होती है और वो भी एक लय के साथ होती है। अजान का भी एक तरीका है, तो अगर औरत अजान देना शुरू हो जाएगी तो वो भी एक लय के साथ अजान देगी, जिस तरीके से कि अजान देने का तरीका है, तो उसको भी मना फरमा दिया, औरत अजान भी नहीं दे सकती। ठीक है, तो लेकिन नमाज के का जो मामला है ना, नमाज के अंदर अल्लाह ताला ने बहुत ही एडिशनल यानी बल्कि खाली नमाज नहीं, जितनी इबादतें हैं, इबादतें, ठीक है, चाहे वो नमाज की इबादत हो, चाहे जो है वो रोजे की इबादत हो, चाहे जो है वो हज की इबादत हो, ठीक है ना, ये सब इबादतें कहलाती हैं ना। ठीक है, तो इन इबादतों के अंदर यानी ये बदनी इबादतें हैं, रोजा और नमाज और हज। ठीक है, हज में भी बदनी इबादत बहुत ज्यादा है, आपको बदन से जो है वो काम करने होते हैं, खाली पैसा तो खर्च नहीं करना पड़ता ना। जकात जो है वो माली इबादत है, वो बदनी इबादत नहीं है, लेकिन हज रोजा और नमाज ये बदनी इबादतें हैं। बदनी इबादतों के अंदर अल्लाह ताला ने औरतों और मर्दों के दरमियान बहुत क्लियर फर्क रखा है। सही है, बदनी इबादतों में अल्लाह ताला ने औरतों और मर्दों के दरमियान क्लियर फर्क रखा है। इस वजह से जो नमाज है उसके अंदर औरत को जो है वो करेक्शन करने की इजाजत नहीं है अपनी जुबान से। ठीक है, करेक्शन करने की, अगर कोई आगे कोई गलती हो जाए इमाम साहब से तो औरत जो है ना वो सुभान अल्लाह नहीं कह सकती। ठीक है, इसका मतलब ये नहीं है कि औरत की आवाज सतर है इस वजह से वो सुभान अल्लाह नहीं कह सकती। भाई अगर इमाम साहब जो है वो उसका अपना बेटा हो, इमाम साहब उसका हस्बैंड हो, इमाम साहब उसके बाप या भाई हो, ठीक है, तो फिर सतर की क्या, अगर सतर होती तो फिर उसके अंदर फिर क्या मसला है। ठीक है, लेकिन नहीं, अगर अपना बेटा भी नमाज पढ़ा रहा हो ना फिर भी औरत करेक्शन करने के लिए सुभान अल्लाह नहीं कह सकती। ठीक है, तो ये फर्क की वजह से, ये फर्क अल्लाह ताला ने सारी बदनी इबादतों के अंदर रखा है। ठीक है, तो तिलावत जो है वो औरत जो है वो बुलंद आवाज से नहीं कर सकती, लेकिन अगर रात के वक्त वो पढ़ेगी तो कम से कम इतनी उसकी आवाज होगी कि उसके अपने कानों को आ सके। ठीक है ना, किसी दूसरे को सुनाने की जरूरत नहीं है, अपने कानों को तो सुना सकती है ना। ठीक है, और मर्द भी जो है वो भी जरा आराम से उस वक्त नमाज पढ़ेगा। ठीक है, तो उस वक्त जो अल्फाज जुबान से निकलेंगे अपने कान भी उसको सुनेंगे और दिल भी हाजिर होगा। तो ये औरतों और मर्दों दोनों के लिए हो गया। ओके, जब क्या, जब टोपी के इस तराहे में गए थे तो वहां खवातीन ने खुद जमात करवाई और एक औरत ने बुलंद आवाज से किरत के साथ जमात करवाई। माशाल्लाह माशाल्लाह। अच्छा, हाँ कहीं आप, मुझे पता है आप लोग एक दफा बहुत वो हुआ था, बहुत ज्यादा इनविटेशन आपके हस्बैंड को आई थी तो फिर आप लोगों को जाना पड़ा था, तो उसकी सारी तफसील जो है आपके हस्बैंड साहब इसको बता चुके हैं जी। तो अब वो तो माशाल्लाह मनमर्जी वाले लोग जो होते हैं तो फिर तो हर जगह फिर अपने तरीके से काम करते हैं ना, तो उनकी तो क्या बात है। एनीवे, चलिए ठीक है, तो अक़वामु क़ीला, खैर औरतों की जमात जो है ना, जमात की हद तक जो है वो दूसरे फुकाहा के नज़दीक इजाजत है। ठीक है ना, दूसरे हनाफ के नज़दीक नहीं, शवाफे के नज़दीक गालबन जो है वो औरत की जमात जमात हो सकती है, क्योंकि एक दफा जो है आयशा सिद्दीक रहा था ने जमात करवाई थी, ठीक है। लेकिन ये जो है इसको आप जनरलाइज नहीं कर सकते, और हमारे यहाँ तो फुकाहा ने जो 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 रीजंस दिए हैं, तो फिर औरतों की जमात तो वैसे भी हमारे यहाँ बिल्कुल भी जायज नहीं है, ठीक है। और जाहिर उसके पीछे भी हदीस और कुरान ही की दलाइल होते हैं। वो अकवम कीला तफजील, ये अकवमों का जो लफ्ज है ये इसम तफजील का सीगा है, सुपरलेटिव फॉर्म है। तो फरमाते हैं कि अकवामों के मानी ज्यादा मुस्तकीम यानी इस्तकामत वाला, ज्यादा मुस्तकीम ये ज्यादा इस्तकामत प्रोड्यूस करने वाला। तो अकवामों ज्यादा मुस्तकीम व दुरुस्त और ज्यादा साबित के हैं, अकवामों के मानी मुराद ये है कि रात के वक्त में तिलावत कुरान ज्यादा दुरुस्त और जमाओ और सबात के साथ हो सकती है, क्योंकि मुख्तलिफ किस्म की आवाजों और शोर शुगब से कल्ब और जहन मुशवश नहीं होता, ठीक है ना। यानी तश्वीश और जहन के अंदर एक डिस्ट्रैक्शन जो है, जैसे अभी अब थोड़ी देर पहले माशाल्लाह में कुलसूम साहब आई हुई थी और वो दोबारा आ गई है वैसे, तो वो जो आवाजें निकाल रही है ना, तो अब ये आजिज का जो जहन है ना वो अपने मजमून से मुशवश हो गया, ठीक है। तो जो एक्सटर्नल आवाजें होती है ना उससे फिर इंसान डिस्ट्रैक्टेड होता है, चाहे इवन बच्चे की भी आवाज हो, ठीक है। तो ये एक नेचुरल सी चीज है। तो इस वजह से जो रात का वक्त होता है तो वो इबादत के लिए बहुत अच्छा होता है। इसी वजह से इबादत करने के बाद अगर वक्त मिले, ठीक है, नमाज पढ़ने के बाद अगर वक्त मिले, तो जो मुराकबे का मामूल है ना वो भी तहज्जुद के वक्त में किया जा सकता है, और उसको भी पसंद किया गया है। वो भी जाहिर तहज्जुद यानी मुराकबा करना भी उस वक्त में बहुत ज़्यादा यानी आसान होता है और मौसर होता है, क्योंकि उसके अंदर भी कॉन्सेंट्रेशन चाहिए होती है मुराकबे के अंदर भी। खुलासा इस आयत का भी हुक्म क्याम लैल की हिकमत बयान करना है। इससे पहली आयत में जो इसकी हिकमत इरशाद फरमाई गई थी, इन्ना सनुल्की अलैका कौलन थकीला, तो ये तो हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात कुदसी के साथ खास थी कि कौल सकील यानी कुरान के नुजूल का ताल्लुक आप ही की ज़ात से है। इस दूसरी आयत में जो हिकमत बयान हुई वो सब उम्मत के लिए आम है कि रात की नमाज में दो वस्फें, अव्वल कल्ब व जुबान में मुवाफ़क़त, दूसरे तिलावत कुरान में बवजह सुकून के आसानी, ठीक है। तो कौलन सकीला तो सिर्फ नबी अलैहिस्सलाम के ऊपर अल्लाह ताला ने नाजिल करना था ना, यानी कुरान का नुजूल तो आप के कल्ब मुबारक पर होना था, ठीक है। लेकिन पूरी उम्मत के ऊपर तो ये काम नहीं होना था, तो फिर पूरी उम्मत के लिए यहाँ पर क्या चीज़ रेलेवेंट है, वो ये है कि रात की नमाज में उनको तिलावत कुरान में सुकून की वजह से आसानी होती है, ठीक है। और कल्ब ज़बान में मुवाफ़क़त भी होती है, ठीक है। तो ये हो गया, इन्ना सनुल्की अलैका कौलन थकीला, इन्ना लका फिन नहारे सबहन तवीला, बेशक तेरे लिए दिन के अंदर एक सबहन तवीलन है। क्या मतलब? लफ्ज़ सबह के लफ्जी मानी जारी होने और घूमने फिरने के भी हैं, ठीक है। यानी जारी होने का मतलब होता है कि मूवमेंट स्टार्ट हो जाना, जब भी जो इंसान बहुत ज्यादा मुराकबा करता है और अच्छे तवज्जो के साथ जब मुराकबा कर पाते हैं ना, तो फिर क्या होता है, इंसान का कल्ब जारी हो जाता है। कल्ब जारी हो जाता है क्या मतलब? मतलब ये होता है कि इंसान के जो सीने के अंदर अल्लाह ताला ने लताइफ बनाए हैं, ठीक है। लताइफ एक यानी पॉइंट्स होते हैं सीने के अंदर, मुकामात होते हैं सीने के अंदर, ठीक है। ये मुकामात जो होते हैं इनके ऊपर मुराकबा किया जाता है। पहला सबक लतीफ़ कल्ब, दूसरा सबक लतीफ़ रूह, तीसरा सबक जो है वो लतीफ़ सिर, ठीक है, और खफी, फिर अख्फा। ये पांच लोकेशंस हैं, ठीक है। जो लोग मुराकबा करते हैं तो उनको इन लोकेशंस का पता होगा, और अगर नहीं पता है तो उनको पूछना चाहिए, ठीक है। हमारे पास माशाल्लाह किसी अल्लाह के बंदे ने बाकायदा एक डायग्राम बनाई, और उस डायग्राम के अंदर उन्होंने पॉइंट्स के जरिए से इन पांचों पॉइंट्स को जो है वो इंडिकेट भी कर दिया, ठीक है। तो ये जो पांच पॉइंट्स हैं ना ये लताइफ कहलाते हैं। तो इन लताइफ के ऊपर मुराकबा किया जाता है, मतलब मुराकबे के अंदर ये तस्वर किया जाता है कि अल्लाह ताला की रहमत मेरे पहले लतीफे में आ रही है, और वहां से अल्लाह अल्लाह की आवाज जारी हो रही है और मैं उसको सुनने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। तो जब इस तरीके से इंसान अपने एक लतीफे के ऊपर फोकस करके कुछ अरसे तक मुराकबा करता है ना, तो वो लतीफा जो है वो जारी हो जाता है, जारी हो जाने का क्या मतलब होता है, उस लतीफे में तहर्रुक पैदा हो जाता है, ठीक है, मूवमेंट पैदा हो जाती है, वाइब्रेशन सी शुरू हो जाती है, इसी को कहते हैं कल्ब का जारी होना, बल्कि या लतीफे का जारी होना, बल्कि कल्ब का जारी होना से बेहतर लफ्ज होगा लतीफे का जारी होना, ठीक है। तो सबह का यानी सबहन का जो लफ्ज है इसका एक मतलब होता है जारी होना, यानी मूवमेंट शुरू हो जाना, ठीक है। और जब वो चीज जारी हो जाती है, मूवमेंट शुरू हो जाती है, तो फिर जाहिर है अपनी जगह से हट करके फिर वो घूमने फिरने लग जाती है। इसी से पानी में तैरने को भी सबह और सबाहत कहा जाता है, कि पानी में बगैर किसी रुकावट के घूमना फिरना तैराकी के साथ आसान है। क्या सूरज और चांद जो हैं वो अपने मदार के अंदर तैर रहे हैं, क्या है वो आए जो सब होना, नहीं वो तो तस्वीर वाली है, सूरह यासीन की जो आया था क्लास के दौरान, तो मुश्किल हो गया था तैरा। तो तैरने को भी सब और सबाहत कहा जाता है, कि पानी में बगैर किसी रुकावट के घूमना फिरना तैराकी के साथ आसान है, यानी पानी के अंदर चूंकि रेजिस्टेंस कम होती है, तो इस वजह से आप बड़ी स्मूथली जो है ना वो फ्लो कर सकते हैं पानी के अंदर, इसी को सब कहा जाता है। यहां मुराद सब से दिन भर के मशागिल हैं, जिनमें तालीम व तबलीग और इस्लाह खल्क के लिए या अपनी मुआशी मसालेह के लिए चलना फिरना सब दाखिल हैं, ठीक है। क्या मतलब कि दिन के अंदर ये सारे जो काम हैं, चाहे तालीम तबलीग के हों, चाहे जॉब और बिजनेस वगैरह के हों, ये सारे काम जो है वो आसानी से इंसान कर सकता है, ठीक है। कैसे आसानी से कर सकता है, क्या उसको चलना फिरना उसके अंदर तकलीफ नहीं होती, क्या उसको जो है वो गाड़ी ड्राइव करने के अंदर तकलीफ नहीं होती, तकलीफ तो होती है, लेकिन आसानी क्यों कहा गया कि दिन के अंदर आसानी क्यों होती है, उसकी वजह कोई अगर आपने से बताए कि दिन में आसानी क्यों होती है कामकाज करने में। इन्ना लका फिन नहारे सबहन तवीला, कि दिन के अंदर एक तवील जो है वो आपको चलना फिरना पड़ता है, ठीक है, लेकिन चलना फिरना दिन के अंदर आसान है, ठीक है ना। तो क्यों दिन में क्यों आसान है, रात में क्यों आसान नहीं है, क्योंकि यहां पर रात और दिन की बात हो रही है ना, पहले रात की बातें हो गई कि भाई रात में जो है ना वो आपने तिलावत करनी है, आपने जो है वो यानी नमाज पढ़नी है, और आपने जो है वो बड़ा लंबा जो है वो जागना है, एक ही जगह पे खड़े होकर के काम करना है, ठीक है। और दिन के अंदर क्या बात हो रही है, दिन में बात ये हो रही है कि चलना फिरना आपके लिए यानी आसान है, आपने ये सारे काम करने हैं, ठीक है, बगैर रुकावट के, क्योंकि सब का लफ्ज इस्तेमाल हुआ, बगैर रुकावट के आप चल फिर सकते हैं। दिन को अल्लाह ताला माश के लिए बनाया, अच्छा मुआश के लिए बनाया, तो क्यों क्यों आसानी क्यों हो जाती है मुआश में, तो दूसरा जवाब जो जिन्होंने प्राइवेटली दिया है उन्होंने सही जवाब दिया है, रोशनी की वजह से, ठीक है, रोशनी की वजह से, बिकॉज ऑफ सनलाइट, जैसे आपने देखा, ठीक है, अल्लाह ने दिन को मुआश मुआशन बनाया, ठीक है, वो तो खैर बनाया अल्लाह ने, लेकिन हमारे लिए आसानी कैसे हो जाती है, उसके लिए कौन सा सबब जो है वो फायदा देता है हमें, इस मुआश को आसानी से हासिल करने में कौन सा अल्लाह ताला का बनाया हुआ सबब हमें मदद देता है, वो सबब जो है वो सूरज की रोशनी है। वजअल क्या वजह वजन नल नहारा माशा हाँ जी ठीक है, वजअल नल नहारा माशा, ठीक है, लेकिन सबब क्या है, रोशनी, सूरज की रोशनी जो कि रात के वक्त नहीं होती है, ठीक है। तो रोशनी के अंदर कामकाज करने आसान होते हैं, जब अंधेरा हो जाता है तो उस वक्त आप कामकाज नहीं कर सकते हैं, उस वक्त आप एक जगह बैठ करके इबादत कर सकते हैं या एक जगह खड़े होकर के इबादत कर सकते हैं, जो कि आपको करनी चाहिए, ठीक है। चूंकि हम जिस दौर से गुजर रहे हैं, ये दौर जो है ये यानी जाहिर है ईमान वालों के हाथ से निकल चुका है सारा का सारा मामला, और ये सारा का सारा मामला जो है वो कुफर के हाथ में चला गया है, हत्ता के दुनिया के जाहिरी मामला भी कुफर के हालत में चले गए हैं, और जो मुसलमान हैं हम जैसे मुसलमानों के दिलो दिमाग भी कुफर के हाल के हाथों में चले गए हैं, ठीक है। तो अब और बचा क्या फिर हमारे पास, सिर्फ एक रत्ती रत्ती बराबर जो है वो कुछ रह गया हमारे पास, नाम रह गया ना खाली, बाकी तो सब कुछ कुफर के हाथ में। हमारे अपने दिलो दिमाग जब कुफर के हालत में चले गए, फिर उस वजह से हम अपनी औलादों को, जो कि अल्लाह ताला हमें नेमतों के साथ, यानी बहुत बड़ी जो है वो हमारे ऊपर एहसान करके हमें औलाद देता है, तो चूंकि हमारे अपने दिलो दिमाग जो है वो कुफर के हाथ में है, तो इस वजह से हम अपनी औलादों को भी उठा करके जो है ना वो उनको पेश करते हैं, लीजिए लीजिए मेरे बेटे को, लीजिए लीजिए मेरी बेटी को, लीजिए, और आप जैसा इसको बनाना चाहते हैं आप इसको बना लीजिए। ठीक है, तो जो एक चीज हमारे हाथ में अल्लाह ताला ने दी होती है ना, हम उसको भी उठा करके पेश कर देते हैं। तो इनके हाथ में फिर सब कुछ है, सब कुछ कुफर के हाथ में। तो जब कुफर के हाथ में सब कुछ होगा, तो फिर उसने अल्लाह ताला की बनाई हुई तरतीब को उलटना है ना। ठीक है ना, अल्लाह ताला की बनाया हुआ निजाम क्या था, दिन में रोशनी रात में अंधेरा, दिन में काम रात में आराम, लेकिन कुफर का मतलब होता है उलट। ठीक है, तो उसने जो है ना वो रात को भी जो है वो आराम के लिए नहीं छोड़ा, बल्कि रात में भी इतनी फ्लड लाइट्स लगा दी, इतनी फ्लड लाइट्स लगा दी कि वो फ्लड लाइट्स की वजह से रात भी दिनी बन जाता है। ठीक है, तो अब रात में भी जो है वो बड़े मजे से काम कर रहे होते हैं, बड़े मजे से जो है वो शगल कर रहे होते हैं, सब कुछ कर रहे होते हैं और उस पर खुश हो रहे होते हैं। क्या जबरदस्त टेक्नोलॉजी है, क्या जबरदस्त जो है वो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आया है कि हमें सोने की जरूरत ही नहीं है, हमें अब आराम की जरूरत ही नहीं है। ठीक है ना, हम हर वक्त ही काम करते रहे, हर वक्त ही गधे की तरीके से इनकी गुलामी करते रहे, और बहुत खुशी होती है हमें, दिल से हम फरहत महसूस कर रहे होते हैं इसके ऊपर, माशाल्लाह। तो ऐसा अल्लाह ताला ने सिस्टम नहीं बनाया था, लेकिन हमारी बदबख्तियों की वजह से हमने क्योंकि पूरा का पूरा उनके हवाले कर दिया, अब उन्होंने फिर उसको लड़ दिया उठा करके। वकुल्लुन फी फलकी यस्बहून, जज़ाकुमुल्लाह। बिल्कुल सही आपने आया था कि ये जो अब हर कोई जो है वो अपने फलक में, यानी अपने ऑर्बिट के अंदर तैर रहा है। ठीक है, तो वहां पर भी यही यस्बहून का लफ्ज इस्तेमाल हुआ। तो आगे फरमाते हैं कि इस आयत में क़यामुल्लैल के हुक्म की तीसरी हिकमत व मसलहत का बयान है। ये भी अहद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और पूरी उम्मत के लिए आम है, वो ये कि दिन में तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और इसी तरह दूसरे सभी हजरात को बहुत से मशागल चलने फिरने के रहते हैं, फराग बाली से इबादत में तवज्जो मुश्किल होती है। ठीक है, तो काम कामकाज के अंदर आप यानी फारिग नहीं होते ना उसके अंदर, तो इस वजह से इबादत में तवज्जो मुश्किल होती है। रात का वक्त इस काम के लिए रहना चाहिए कि बकदरे जरूरत नींद और आराम भी हो जाए। भाई इशा के बाद जब आप सो जाएंगे, ठीक है, तो फिर क्या आपको नींद मिलेगी? नहीं। ठीक है, 5-6 घंटे की आप नींद आसानी से कर सकते हैं इशा के बाद अगर आप सो जाएं तो, और क़यामुल लैल की इबादत भी आपके लिए आसान हो जाएगी। ठीक है, असर के बाद जो है वो लोग अपने घरों को लौट जाते थे, और मगरिब के बाद जो है वो सुकून और आराम के साथ घर के अंदर लोगों के साथ मिलकर के, अपने घर वालों के साथ मिलकर के खाना वाना खा लिया करते थे, और इशा की नमाज पढ़ते थे, और उसके बाद फिर आराम की तरफ चले जाते थे। ठीक है, तो ये थी जिंदगी की तरतीब। फायदा, हजरात, मैं पढ़ता हूँ आप लोगों के मैसेजेस। हजरात फुकहा ने फरमाया कि शायद से साबित होता है कि उलमा व मशायख जो तालीम व तरबियत और इस्लाह खल्क की खिदमतों में लगे रहते हैं, उनको भी चाहिए कि ये काम दिन ही तक महदूद रहने चाहिए। रात का वक्त अल्लाह ताला के हुजूर हाजिरी और इबादत के लिए फारिग रखना बेहतर है, जैसा कि उलमाए सलफ का तआमुल इस पर शाहिद है। कोई वक्ती जरूरत दीनी, तालीमी, तबलीगी कभी इत्तेफाकन रात को भी इसमें मशगूल रखने की दाई हो, तो वो बकदरे जरूरत मुस्तस्ना है। इसकी शहादत भी बहुत से हजरात, उलमा व फुकहा के अमल से साबित है। ठीक है, अब जो है वो मौलवी हजरात को हजरत नसीहत कर रहे हैं कि हमें भी जो है ना वो तआमुल असलाफ के मुताबिक जो है वो दिन के अंदर ये सारे काम करने चाहिए, और रात में जो है ना वो रूल नहीं बनना चाहिए कि रात में ही क्लासेस होंगी। ठीक है, बल्कि एज एन एक्सेप्शन रात में क्लासेस रखना चाहिए। ठीक है, लेकिन अगर हजरत मेरे सामने होते तो मैं अगर हजरत से पूछता बतौर तालिब इल्म, ठीक है, कि भाई दिन में तो जो हमारे स्टूडेंट्स होते हैं वो सारे के सारे होते हैं दफ्तर में, ठीक है, और कोई भी जो है ना वो मगरिब से पहले तो अपने घर वापस ही नहीं आता। अभी कराची जाना हुआ तो कराची में हमारे एक कज़न होते हैं, तो उनसे बात हो रही थी, तो वो बताते हैं कि जब मैं अपने दफ्तर से निकलता हूँ ना, तो मुझे अपने घर पहुंचने में 2.5 घंटा लगता है, 2.5 घंटा, राइट। अपने दफ्तर से आइए चंद्रीगढ़ रोड के ऊपर उनका दफ्तर है गालबन, वहां से गुलशन इकबाल में उनका घर है बैतुल मुकर्रम मस्जिद के पास, वहां पहुंचने में उनको 2.5 घंटा लगता है। तो दफ्तर से तो वो फिर भी कुछ पहले निकल जाते होंगे, लेकिन 2.5 घंटा वो बंदा रोजाना जो है वो सड़क के ऊपर गुजार रहा होता है। ठीक है, तो अब दीन आप उसको कब पढ़ाएंगे, कब क्लासेस करेंगे? ठीक है, तो इस वक्त जो है ना, यानी मदरसों का सिस्टम तो एक स्कूल कॉलेज वाला सिस्टम है, तो वहां पर तो जिस तरह स्कूल कॉलेज में जो है वो दिन में क्लासेस होती हैं, क्योंकि वो तो फुल टाइम स्कूल कॉलेज में जैसे जाते हैं वैसे मदरसे में एडमिशन होते हैं। लेकिन अगर हम हजरत जी की बात करें, दूसरे मशाइख की बात करें, जिन्होंने के लोगों को दीन की तरफ आहिस्ता आहिस्ता रागिब करना होता है, कोई तैयार तो नहीं होता कि अपने सारे कारोबार को छोड़ करके मदरसे में एडमिशन ले लें और वहां दीन जाकर के पढ़ना शुरू हो जाए। तो फिर ऐसे लोगों को, तो फिर लोगों को आहिस्ता आहिस्ता इस तरफ लाना होता है ना, थोड़ा थोड़ा कोने कुदरे के अंदर उनसे टाइम, बड़ा उनकी मिन्नत समाजत कर करके और बड़े बड़े लंबे लंबे बयान करके और बातें कर करके उनको उनको इस बात पे लाना होता है कि भाई थोड़ा अल्लाह के बंदे दीन भी पढ़ लो, थोड़ा सा दीन को भी समझ लो, थोड़ा सा कुरान भी पढ़ लो। ठीक है, तो अब ऐसा बंदा जब तैयार होगा तो वो अपनी जॉब तो नहीं छोड़ देगा एकदम से दीन पढ़ने के लिए। ठीक है, तो अब उसके लिए दीन एसेंशियल्स की क्लासेस हो या आलिम कोर्स की क्लासेस हो, ये दिन में कैसे कर सकते हैं? दिन में तो हो ही नहीं सकती ना, क्योंकि दिन में उसे दफ्तर का काम करना है, बिजनेस का काम करना है। ठीक है, तो अब ये तो सिर्फ और सिर्फ रात में हो सकता है। ठीक है ना, ये सारे क्यों है? क्योंकि हम ओवरऑल जो है ना, हम इस कुफर के निजाम के अंदर घुस चुके हैं और फंस चुके हैं। ठीक है ना, अब इस निजाम से जो है ना वो एकदम से नहीं निकला जा सकता, कोई बगावत नहीं की जा सकती इस निजाम से कि नहीं जी हम तो बस अल्लाह के निजाम के मुताबिक दिन में काम करेंगे, दिन में क्लासेस करेंगे और रात में जो हमने खाली आराम करना है। कर सकते हैं कोई इस तरह से? नहीं, कोई नहीं कर सकता, कोई कर ही नहीं सकता इस तरीके से। और अगर कोई इस तरीके से ऐलान करेगा ना कि नहीं मैं तो दिन में काम करूंगा क्योंकि अल्लाह ने यही निजाम बनाया है और रात में काम नहीं करूंगा, राइट, तो क्या होगा फिर उसके साथ? कोई भी उसकी बात नहीं सुनेगा। ठीक है, वो उसको बुरा भला कह करके सारे जो है वो अपने काम में लगे रहेंगे। ठीक है ना, तो इस वजह से ना यहाँ पे हजरत ने नसीहत तो बिल्कुल ठीक करी है, लेकिन इस वक्त जो है वो ये चीज चूंकि बिल्कुल भी काबिले अमल नहीं है, तो इस वजह से मशाइख का जो सारा काम है ना इस वक्त, जो ड्यूरिंग द वीक होता है, वो सिर्फ और सिर्फ रात को होता है, और वीकेंड्स के ऊपर जो है वो ले दे के थोड़ा सा टाइम जो है वो दिन के अंदर फिर भी मिल जाता है, तो फिर उसमें दिन में काम करते हैं। अच्छा, मेरा सेशन जो है ना वो रीसेट हो गया था, तो दो मैसेजेस भेजे गए थे जिनको मैं पढ़ भी नहीं सका अभी तक। एक्चुअली एक था जिसको मैं पढ़ नहीं सका, दूसरे को पढ़ लिया था। तो आपसे गुजारिश है कि आप प्लीज़ अपना मैसेज ऊपर से कॉपी करके ना दोबारा से पेस्ट कर दें, क्योंकि मेरा सेशन रीसेट हो गया, तो अब वो मैसेज गायब हो गया मेरी विंडो से ना, स्क्रीन से। ठीक है, तो अब आगे पढ़ने से पहले आपका मैसेज मैं पढ़ लेता हूँ, तो उसका जवाब पहले कर लेते हैं। कॉपी पेस्ट करके आप भेज सकती हैं जिन्होंने आखिरी मैसेज भेजा था, थोड़ा लंबा सा था। चलिए, जब तक आप भेजें तो थोड़ा सा और आगे पढ़ लेते हैं। अच्छा, तो ये फायदा हमने पढ़ लिया, इसके बारे में किसी को कोई सवाल हो, कोई बात समझ में ना आई हो? ठीक है, तो यानी इस पूरी बहस का लुबे लुबाब ये है कि हमने अपने जहन में तो बातों को बिल्कुल सही सही समझना है कि क्या गलत है क्या सही है, गलत को हमने गलत कहना है, सही को हमने सही कहना है। ठीक है ना, अपने दिलो दिमाग से, ठीक है, सिर्फ जुबान से नहीं, तोते की तरह जिस तरह जुबान से कोई चीज चल रही होती है तोते की, लेकिन दिल और दिमाग जो होता है वो बिल्कुल भी अपने जुबान से, हम ऐसे नहीं किसी चीज को गलत कहना है किसी चीज को सही कहना है, बल्कि उसको दिल में गलत समझ करके फिर अपनी जुबान से उसको गलत कहना है, और दिल में किसी सही बात को सही समझ करके फिर जुबान से उसको सही कहना है। ठीक है, लेकिन हम उस गलत को ठीक करने के अभी पोजिशन में नहीं है। ठीक है, कि हम जो है वो जोरे बाजू के जरिए से या जुबान से बोल बोल करके जो है वो गलत को सही कर सकें। ठीक है, लेकिन कम से कम दिल के अंदर उसको गलत समझना, ये कम से कम दर्जा है जिससे कि हम अपने आप को मुस्तस्ना नहीं कर सकते कि भाई सारा ये सिस्टम गलत चल रहा है तो चलो हम उसको अब सही कहना शुरू हो जाते हैं। यानी जो गलत सिस्टम चल रहा है ना, चूंकि हम गलत सिस्टम को चेंज नहीं कर सकते, हम अपने आप को गलत सिस्टम से निकाल नहीं सकते, तो इस वजह से हम उस गलत चीज को सही कहना शुरू हो जाए। इसकी इजाजत नहीं है। ठीक है, अगर आप गलत चीज को सही कहना शुरू हो जाएं तो इसका मतलब क्या है कि आप ईमान के दर्जे से नीचे गिर चुके हैं। ठीक है, ईमान से आप फारिग हो चुके हैं या होने वाले हैं। ठीक है, तो इसकी बिल्कुल भी इजाजत नहीं है। तो इस वजह से बार बार आपको जो है ना वो जो गलत सिस्टम है उसकी गलतियां आपके सामने बयान की जाती हैं, ताकि आप दिल से कन्विंस होकर के उसको अपने दिल में बुरा समझना भी शुरू हो जाए, अगर पहले से नहीं उसको बुरा समझ रही है तो। अच्छा, सवाल करने वालों में से एक ने सवाल किया था कि हदीस की इजाजत देने का क्या मतलब है। इन्होंने मुझे अलग से व्हाट्सएप के ऊपर सवाल भेजा था, तो मैंने उनसे कहा था कि क्लास में पूछ लिएगा, क्योंकि ये एक जनरल नॉलेज का सवाल है। तो सवाल इन्होंने इस कॉन्टेक्स्ट में किया था कि आपने शायद सुना हो कि हमारे हजरत के जो अक्सर आजकल बयानात होते हैं ना, खुसूसन मदारिस के अंदर, तो बयानात के खात्मे पर फिर मदारिस के तुलबा हजरत को रिक्वेस्ट करते हैं कि आप अपनी हदीस की इजाजत जो है वो हमें भी दें। ठीक है, तो फिर हजरत जो है वो पूरा अपने अपने हदीस की इजाजत जो है वो वहाँ की जो मौजूद तुलबा होते हैं उनको देते हैं। तो इसका मतलब क्या है हदीस की इजाजत देने का, ये सवाल था। तो इसका जवाब ये है कि हदीस मुबारका जो हम पढ़ते हैं ना, ठीक है, ये हम सनद के साथ पढ़ते हैं। ठीक है, जैसे काला अबू हुरैरा रजी अल्लाह ताला अन काला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कि अबू हुरैरा रजी अल्लाह ताला ने फरमाया कि नबी अलैहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ऐसे ऐसे। ठीक है, तो ये हदीस जो है ये दो हिस्सों पर मुश्तमिल होती है। एक हिस्सा जो है वो सनद कहलाता है, काला रसूलुल्लाह काला अबू हुरैरा, राइट, ये सनद कहलाता है। और जो नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया वो इसका मतन कहलाता है। तो हदीस दो हिस्सों पर मुश्तमिल होती है, सनद एंड मतन। सनद को अंग्रेजी में चेन कहते हैं। ठीक है, तो ये जो सनद है ना, ये सनद जो है वो ये जब मदरसे के अंदर हदीस पढ़ी जाती है तो जो मदरसा का टीचर होता है ना, मदरसे के अंदर जो हदीस का टीचर होता है, तो वो पूरी सनद के साथ उस हदीस को पढ़ा रहा होता है। यानी उसके पास ये सनद होती है कि मैंने अपने टीचर से इस हदीस को पढ़ा, मेरे टीचर ने अपने टीचर से इस हदीस को पढ़ा, उसने अपने टीचर से पढ़ा, उसने अपने टीचर से पढ़ा, और ये सनद जो है वो पूरी ऊपर जा करके नबी अलैहिस्सलाम तक पहुंचती है। तो हर उस्ताद के पास मदरसे के अंदर एक सनद होती है कि उसका उस्ताद कौन था, उसका उस्ताद कौन था ऑल द वे अप टू नबी अलैहिस्सलाम। इसको कहते हैं उस उस्ताद की सनद। ठीक है, जैसे कि आपके उस्ताद हैं मौलाना अब्दुल्ला मर्दानी दानदोकातुम, ठीक है, वो शायद बुखारी शरीफ पढ़ाते हैं, आप लोगों को भी पढ़ाई थी, और अब जो जो बैच पढ़ रहा है मिश्कात शरीफ, तो वो भी इनको पढ़ा रहे हैं मिश्कात अव्वल। तो उन्होंने अपने उस्ताद से जो जो हदीस पढ़ी थी ना, यानी जो हदीस पढ़ी थी उन्होंने अपने उस्ताद से पढ़ी, तो उनकी सनद जो है वो इस तरीके से, उनसे फिर उनके ऊपर उनके उस्ताद, फिर उनके ऊपर उनके उस्ताद, ये उनकी सनद कहलाती है। ठीक है, तो जब आप उनसे ये हदीस पढ़ती हैं ना, कोई भी हदीस पढ़ती हैं, तो ये सनद जो है ना वो आप तक एक्सटेंड हो जाती है, ये आप तक बढ़ जाती है कि मौलाना अब्दुल्ला मर्दानी से आपने ये हदीस पढ़ी। ठीक है, तो इसी को कहते हैं कि उन्होंने अपनी सनद की इजाजत जो है वो आपको भी दे दी, क्योंकि उन्होंने आपको पढ़ाया ना। इस पढ़ाने का मतलब यही है कि उन्होंने आपको अब इजाजत दे दी है कि जी ये सनद जैसे मैंने सुनी थी अपने उस्ताद से, आपने मुझसे सुन ली है, अब आप भी जो है ना इस हदीस को पढ़ाने की मजाज हो गई है, आपको भी इजाजत मिल गई है कि आप इस हदीस को पढ़ा सकती हैं। ठीक है, तो इसको कहते हैं अपनी सनद जो है वो किसी दूसरे तालिबे इल्म को देना। ठीक है, तो जब हजरत दामाद का बयान होता है किसी मदरसे के अंदर ना, तो वहां पर जो तुलबा उनसे सवाल उनसे रिक्वेस्ट करते हैं कि आप अपनी सनद जो है वो हमें भी दे दें, इसका मतलब ये होता है कि हजरत जी ने जो हदीसें पढ़ी है ना, तो उनके जो असातजा हैं, ठीक है, वो हजरत जी की सनद कहलाएंगे कि हजरत ने मौलाना जाफर साहब जो कि बुखारी शरीफ के माशाल्लाह हाफिज हैं, बहादुर फकीर जंग के अंदर होते हैं, तो हजरत की सनद बुखारी शरीफ की कैसी है कि हजरत के जो उस्ताद मौलाना जाफर हैं, मौलाना जाफर के जो उस्ताद थे, मौलाना जाफर के उस्ताद के जो उस्ताद थे, ये सारी जो है ना वो हजरत जी की सनद कहलाती है। ठीक है, तो ये जो सनद है ये हजरत जो है वो फिर उस मदरसे में, जिस मदरसे में बयान हो रहा होता है, उसके तुलबा को भी ये सनद दे रहे होते हैं कि जी मैं आपको इजाजत देता हूं कि आप जो है ना वो मेरी सनद के साथ भी हदीसें आगे बयान कर सकते हैं। ठीक ठीक है। हालांकि वो बैठ करके हजरत जी बयान के बाद एक एक हदीस पढ़ा नहीं रहे होते, ठीक है, एक एक हदीस पढ़ा नहीं रहे होते, लेकिन फिर भी वो सनद उन तुलबा को दे देते हैं, ये कैसे होता है? आपने तो मौलाना अब्दुल्ला मर्दानी से एक एक हदीस पढ़ी ना, तो फिर पढ़ने की वजह से आपको उनकी सनद मिल गई, यानी आप उस सनद के अंदर, उस चेन के अंदर ऐड हो गई, ठीक है। लेकिन हजरत जी ने तो मदरसे के जो तुलबा हैं जहां बयान करने के लिए गए थे वहां पर तो वो एक एक हदीस नहीं पढ़ाई, फिर कैसे सनद उनको ट्रांसफर कर दी, या फिर कैसे सनद उन तक जो है वो एक्सटेंड कर दी? वो ऐसे होता है कि उस मदरसे के हर तालिबे इल्म को सनद नहीं दे रहे होते हजरत जी, हर तालिबे इल्म को सनद नहीं दे रहे होते हजरत जी, जो है वो सिर्फ उस मदरसे के अंदर जो असातज़ाए कराम है जो कि पहले से ये किताबें पढ़ चुके हैं, पहले से पढ़ चुके हैं ये किताबें, ठीक है, जब भी तो आलिम बने हैं, दौरा हदीस के बगैर तो कोई आलिम नहीं बन सकता, तो जो पहले से ये किताबें पढ़ चुके हैं ना हजरत जी, सिर्फ उनको सनद दे रहे होते हैं, या जो उस मदरसे के अंदर दौरे हदीस के तुलबा हैं जो 8वें साल के अंदर हदीस की किताबें पढ़ रहे हैं उनको सनद दे रहे होते हैं, ठीक है। इस गुमान के साथ कि ये हदीसें पढ़ तो ये चुके हैं ऑलरेडी अपने असातजा से, ठीक है, अपने असातजा से ये सारी हदीसें ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, अब सिर्फ मैं ये कर रहा हूं, मैं इनको दोबारा से पढ़ाऊंगा नहीं, क्योंकि मुझे दोबारा रिपीट करने की जरूरत नहीं है, ये ऑलरेडी पढ़ चुके हैं अपने असातजा से इन हदीसों को, तो अब मैं सिर्फ ये कर रहा हूं कि मैं ये गुमान रखते हुए कि भाई पढ़ तो ये ऑलरेडी चुके हैं किसी सनद वाले उस्ताद से, मैं बस अपनी सनद के अंदर, अपनी चेन के अंदर, ठीक है, जो चेन मुझसे लेकर के मेरे असादत, फिर मेरे असादत से ऊपर, फिर ऊपर ऊपर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक पहुंचती है ना, मैं उस चेन के अंदर इनको ऐड कर रहा हूं, ठीक है। ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे कि आपको पिछले दिनों समझाया था ना कि चेन कैसी होती है, उसके अंदर कड़ियां होती हैं, एक कड़ी जो है वो दूसरी कड़ी से मिली हुई होती है, दूसरी तीसरी से मिली होती है, तीसरी चौथी से मिली हुई होती है, ठीक है। अब एक चेन है, एक जंजीर है जिसके अंदर 40 कड़ियां हैं, ठीक है, 40 कड़ी लंबी वो जंजीर है, तो अब अगर आप एक और कड़ी को या एक और कड़े को उस जंजीर के अंदर ऐड करना चाहें तो इस कड़े को आप कहाँ ऐड करेंगे, 40वें कड़े के साथ इसको जोड़ देंगे, तो अब वो जो है वो इस जंजीर का हिस्सा बन जाएगा, अब इस जंजीर के अंदर 41 कड़े हो गए, ठीक है। तो यही बिल्कुल कॉन्सेप्ट है कि इस जंजीर को जो है ना वो आप आगे एक्सटेंड कर रहे होते हैं, तुलबा को भी इस जंजीर के अंदर शामिल कर रहे होते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से ये सनद जो होती है ना, ये सनद जो है वो बिल्कुल चेन वाला ही कॉन्सेप्ट है, और इस चेन को जो है वो आप उन तुलबा तक एक्सटेंड कर रहे होते हैं, मजीद आगे तूल दे रहे होते हैं, उन तुलबा को भी जो है वो इस चेन के अंदर लगा रहे होते हैं। अब वो तुलबा जो है ना जब आगे हदीस पढ़ाएंगे ना किसी किसी तालिबे इल्म को, जब वो आलिम बन जाएंगे फिर तालिबे इल्म को हदीस पढ़ाएंगे, तो वो फिर उन तुलबा को बताएंगे कि भाई मेरे पास जो हदीस की सनद है ना वो सनद जो है वो पीर जुल्फिकार अहमद नक्शबंदी से होते हुए भी नबी अलैहिस्सलाम तक पहुंचती है, और अपने किसी दूसरे उस्ताद जिनसे कि उन्होंने मदरसे में पढ़ा था, वो कहेंगे कि भाई ये जो उस्ताद मदरसे वाले हैं, मेरी चेन उन मदरसे वाले उस्ताद के थ्रू होते हुए भी नबी अलैहिस्सलाम तक पहुंचती है, ठीक है। यानी अब मेरे पास दो सनदें हैं हदीस की, एक सनद पीर जुल्फिकार अहमद नक्शबंदी के वास्ते से होते हुए ऊपर पहुंचती है, और दूसरी सनद जो है वो दूसरे उस्ताद के, मदरसे वाले उस्ताद के वास्ते से होते हुए नबी अलैहिस्सलाम तक पहुंचती है, ठीक है। तो अब इसके जरिए से उनको जो है ना वो जो मदरसे के तुलबा होते हैं उनको गोया कि एक बड़ी फजीलत मिल जाती है कि उनके पास हदीस की सिर्फ एक सनद नहीं है बल्कि हदीस की दूसरी सनद भी है, दो सनद है, ठीक है। अब सनद जो होती है सिर्फ इसके अंदर तादाद मैटर नहीं करती कि भाई मेरे पास दो सनदें हैं, मेरे पास तीन सनदें हैं, नहीं, बल्कि सनद के अंदर जो जो मशाइख शामिल होते हैं ना उन मशाइख के नाम भी बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं कि भाई इनको सनद जो है वो किन मशाइख से मिली है, ठीक है। तो वो अगर बड़े मशाइख हैं, बहुत मशहूर मशाइख हैं, तो उन मशहूर मशाइख की सनद जो होती है वो ज्यादा अहमियत रखती है, ठीक है, और जाहिर है जो कम मशहूर मशाइख होंगे उनकी सनद जो है वो कम अहमियत रखती है। ये चंद जो है वो मदरसे की जुबान के जो तुलबा होते हैं ना उनके दरमियान इन चीजों की सिग्निफिकेंस होती है कि भाई मेरी सनद में कौन कौन से शेख हैं और उनकी सनद में कौन कौन से शेख हैं। तो अभी जैसे फॉर एग्जाम्पल जंग इज्तिमा में एक मुस्लिम शरीफ और बुखारी शरीफ के उस्ताद आए हुए थे जामे बिनोरिया टाउन के अंदर, जो मुस्लिम शरीफ पढ़ाते हैं और दो और मदारिस में बुखारी शरीफ पढ़ाते हैं, मौलाना फजल मोहम्मद साहब। तौजीहात अगर आपने देखी होगी मिशकात शरीफ की, एक बहुत जबरदस्त शराए शायद 7-8 जिल्दों पर मुश्तमिल है। इस शरा के वो मुसन्निफ हैं, वो आए हुए थे जंग इज्तिमा के अंदर। तो उनसे भी फिर तुलबा ने कहा कि भी आप हमें अपनी सनद दें। तो उन्होंने ना फिर अपनी सनद को डिस्क्राइब किया कि भाई मैंने जो हदीस शरीफ पढ़ी थी ना, मैंने हजरत यूसुफ बिन नूरी रहमतुल्लाह अलैह से हदीस शरीफ पढ़ी थी। तो मेरी सनद के अंदर मौलाना यूसुफ बिन नूरी रहमतुल्लाह अलैह मौजूद है। तो अब मौलाना यूसुफ बिन नूरी रहमतुल्लाह अलैह तो बहुत बड़े शेख थे, ठीक है ना, तो उनका सनद के अंदर होना कितनी बड़ी बात है। तो अब उन्होंने जो हदीस की इजाजत दी ना जंग इज्तिमा के अंदर, तो उस पिंडाल में जितने उलमा मौजूद थे जो कि हदीस शरीफ पहले से पढ़ चुके हैं, उन सबको जो है उनकी तरफ से इजाजत मिल गई। तो अब जो है वो हमारे पास भी, क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह ये फकीर भी वैसे तो आता जाता तो कुछ है नहीं, लेकिन मौजूद था वहां पे, उनकी सोबत में मौजूद था। तो गुमान ये करते हैं कि इस फकीर को भी ये सनद मिल गई कि भाई मौलाना फजल मोहम्मद से मैंने हदीस की सनद ली, और मौलाना फजल मोहम्मद को मौलाना यूसुफ बिनोरी रहमतुल्लाह अलैह से हदीस की सनद थी। तो गोया कि मेरे पास भी हदीस की सनद जो है वो अपने से लेकर के मौलाना फजल मोहम्मद, मौलाना फजल मोहम्मद से लेकर के अल्लामा यूसुफ बिनोरी रहमतुल्लाह अलैह, और उनसे ऊपर फिर बड़े बड़े मशायख तक, ये मेरी भी सनद हो गई। अल्लाह ताला कबूल फरमा लेगा, हमारा तो बस गुमान की मामला है वैसे भी सारा का सारा, ठीक है। तो ये तो कोशिश करिए आपके इस सवाल का जवाब देने की कि हदीस की इजाजत देने का मतलब क्या है। मतलब इसका यही है कि अपनी चेन में ना किसी को ऐड कर लेना, शामिल कर लेना। अच्छा, दूसरा सवाल था कि मेरे बेटे ने क्वेश्चन पूछा कि हम काफिर के साथ गपशप घूम सकते कि वो हमारे दीन के करीब हो। ही इज 19 years old। मैं बेटे को मारुफुल कुरान से पढ़ाती हूँ। मैंने दरासात वफाक से और आलिमा कोर्स जामिया जैनब से किया है, सनद पक्की। अच्छा, तो बेटे का सवाल ये है कि जो नॉन मुस्लिम होते हैं तो उनके साथ अगर हम गपशप रखें और साथ जो है वो उनके घूम घूम फिर, यानी उनके साथ जरा टाइम स्पेंड करें, ठीक है, और नियत हमारी ये हो कि हम उनको दीन के करीब करें, तो 19 साल का जो लड़का है क्या उसको इजाजत देनी चाहिए कि वो ऐसा करे। और वो जो बेटा है इनका, तो ये माशाल्लाह चूंकि खुद भी आलिमा है और इन्होंने आलिमा कोर्स मुकम्मल किया हुआ है, तो ये उस बच्चे को जो है वो मारुफुल कुरान से यानी कुरान की तफसीर वगैरह भी पढ़ा रही होती है, ठीक है। तो क्या उस बच्चे को इस बात की इजाजत देनी चाहिए या नहीं इजाजत देनी चाहिए। तो इसमें ना देखें, आप उस बच्चे की वालदा हैं तो आप जाहिर उस बच्चे को जो है वो बहुत अच्छी तरीके से जानती होंगी, उसकी हरकात सकनात, उसकी मशगूलियात, उसके दिलो दिमाग के जो नज़रियात हैं, वालिदा और वालिद को जो है ना इनका पता होना चाहिए, ठीक है। जिसको बॉडी लैंग्वेज पढ़ना कहते हैं ना, कि आप किसी बंदे की बॉडी लैंग्वेज को देख करके बता सकते हैं कि जी इसके जहन दिलो दिमाग के अंदर क्या चीज़ें अहमियत रखती हैं, ठीक है। तो अगर आप लोग, आप भी और आपके हस्बैंड भी, ठीक है, अगर आप लोग ये समझते हैं कि आपका बच्चा जो है वो बहुत मजबूत दीनी निस्बत का हामिल है, ठीक है, दीन के बारे में वो बिल्कुल, ना सिर्फ ये कि दीन के बारे में वो पक्का है, बल्कि इससे भी आगे बढ़ के जो जरूरी चीज है वो ये है कि उसकी निस्बत, उसका ताल्लुक जो दीन के मशायख हैं उन मशायख के साथ गहरा ताल्लुक है, जिसको कि हम एतमाद वाला ताल्लुक कह सकते हैं, ठीक है, एतमाद वाला ताल्लुक। अगर आपके बेटे का मशायख के साथ एतमाद वाला और मोहब्बत वाला ताल्लुक है, ठीक है, तो इसको क्या कहेंगे कि उसकी निस्बत मजबूत है, दीन के साथ उसकी निस्बत मजबूत है, सिर्फ थ्योरेटिकली नहीं बल्कि उसका मोहब्बत और एतमाद वाला ताल्लुक भी अल्लाह वालों के साथ, ठीक है, अगर मजबूत है तो फिर वो ये काम कर सकता है, ठीक है, कि गैर मुस्लिमों के साथ दीन की तबलीग की नीयत से टाइम स्पेंड करें, सही है, दीन की तबलीग की नीयत से टाइम स्पेंड करें, अगर उसका यहां पर ताल्लुक मजबूत है, निस्बत मजबूत है। अगर, और अगर ऐसा नहीं है ना, तो फिर या आजिज बिल्कुल भी इसका मशवरा नहीं देगा। ठीक है, अगर मुझसे इजाजत मांग रही है तो मैं बिल्कुल भी इसकी इजाजत नहीं दूंगा, और अगर मशवरा मांग रही है तो मैं बिल्कुल भी इसका मशवरा नहीं दूंगा। ठीक है, इसलिए कि अगर ये नहीं है ना, दीन वालों के साथ ताल्लुक मजबूत नहीं है ना, ठीक है, तो फिर उसकी अपनी थ्योरेटिकल नॉलेज या आप जो उसको अपने तौर पर जो पढ़ा रही हैं ये काफी नहीं है। ठीक है, दुनिया, शैतान और नफ्स, ये तीन ताकतें इतनी मजबूत हैं, इतनी मजबूत हैं कि वो उस नॉन मुस्लिम लड़के की सोहबत जो है ना वो इसके ऊपर, यानी बहुत आसानी के साथ उसका असर उसके ऊपर आ जाए। ठीक है, बहुत आसानी के साथ आ जाए, ये नहीं बच सकेगा। ठीक है, तो ये ईमान वाला मसला है, इसके अंदर रिस्क नहीं लिया जा सकता। ठीक है, बिल्कुल, ये जो लड़के होते हैं ना, जो टीन एजर्स है ना, 19 तो टीन के अंदर ही आता है, 19, तो टीन एज वाली जो जो उम्र होती है ना, इसके अंदर पुख्तगी नहीं होती है। शरीयत ने, कुरान ने, यानी जो क्या है ना कि ये जो आप माल, यतीमों का माल जो है वो उनके हवाले कर दें, ठीक है, जब वो बाले होते हैं, तो भाई बाले तो 15 साल में हो जाते हैं, तो क्या 15 साल के बच्चों को आप माल हवाले कर दें, उसके उसके बाप का माल? नहीं, 25 साल तक मशाइख ने लिखे हैं, जब वो 25 साल का हो जाए ना तब उसको माल हवाले करें, क्योंकि खाली फिजिकली बालिग हो जाने का मतलब ये नहीं है कि वो इंटेलेक्चुअली भी बालिग हो गया। ठीक है, तो ये जो उम्र होती है ना, ये बहुत जज्बाती उम्र होती है, और ये यानी बड़ी आसानी से मगलूब हो जाती है, यानी इस उम्र में लोग। ठीक है, तो इस वजह से ये रिस्क जो है ना वो हरगिज हरगिज लेने की जरूरत नहीं दी जा सकती। मशाइख के साथ नस्बत अगर बहुत मजबूत है, फिर वो एक एक्सेप्शनल केस होता है, और उस एक्सेप्शनल केस को आप लोग बेहतर समझते हैं कि अगर ऐसा है तो ठीक है, अदरवाइज मैं कभी भी जाती इसकी मशवरा नहीं दूंगा। अच्छा, एक और ने प्राइवेटली सवाल लिखा था कि सनद पक्की होने से क्या मुराद है, और सनद का आला होना। पक्की होना तो नहीं होता, वो तो नस्बत पक्की होना एक अलग चीज होती है, सनद पक्की होने का कोई लफ्ज है ही नहीं है। ठीक है, तो अब आपका जो सवाल रह गया वो ये रह गया कि सनद आली होने का क्या मुराद, का क्या मतलब है। सनद आली होने का मतलब ये है कि जैसे अभी बात हुई थी ना कि 40 कड़े हैं उस चेन के अंदर, तो अब जो अगला बंदा आएगा तो वो 41वां बंदा होगा, 41st होगा। ठीक है, तो अगर जो है ना वो कोई आपको 39th कड़ा भी मिल जाए, उस चेन के अंदर 39th कड़ा मिल जाए, और आप डायरेक्टली जाकर के उस 39th कड़े के साथ जुड़ जाएं, ठीक है, तो इसको कहेंगे कि आपकी सनद जो है वो आली है। ठीक है, कि आप 40वें के थ्रू होने की बजाय 40वें के वास्ते से उस सनद उस चेन का हिस्सा बनने की बजाय आप डायरेक्टली 39 से जाकर के जुड़ गई। ठीक है, इसको कहते हैं सनद का आली होना। इसी वजह से ये जो हदीस के जो तुलबा होते हैं ना, ये हर वक्त इस चक्कर में रहते हैं कि हमारी सनद जो है वो किसी तरीके से आली हो जाए, कोई ऐसा शेख मिल जाए कि जो जिसके ऊपर जो वास्ते बनते हैं नबी अलैहिस्सलाम तक, ये वास्ते जो है ना वो कम हो। ठीक है, तो इस तरह से ना हमारे और नबी अलैहिस्सलाम के दरमियान जो हदीस की सनद के जो वास्ते होंगे या जो डिस्टेंस होगा, वो डिस्टेंस जो है वो शॉर्टन हो जाएगा, और ये जो है वो इल्मुल हदीस के अंदर ये एक बड़ी बात समझी जाती है। ठीक है ना, ये इल्मुल हदीस की हद तक है, ये इसको तसव्वुफ और तज़किये के अंदर यानी मत समझना शुरू कर दिया गया, कि इस चक्कर में फिर अपना इस्लाही खत्म हो गया। ये हजरत जी से जोड़ना है, हजरत जी से जुड़ना है, और हजरत जी ने जो है वो आपको लाड़ प्यार के बाद में आपको बहुत क्लियरली समझा चुका हूँ, मुझे तो हजरत जी से जुड़ना है, और हजरत जी के पास जो है वो कभी ना जाना होता है, ना कभी उनसे कुछ पूछना होता है, ना कभी उनसे जो है वो डांट पड़ती है। ठीक है, और इस आली यानी तसव्वुफ में भी अपनी आली सनद के चक्कर में इस्लाह से ही फारिग, इस्लाह ही नहीं हुई कभी। ठीक है ना, कभी कोई ना गलत का पता चला, ना कभी सही का पता चला, ना कभी डांट पड़ी, ना कभी जो है वो नफ्स की तजकिया हुआ, और नहीं जी मुझे तो हजरत जी से जुड़ना है। ठीक है, तो ये इस कॉन्सेप्ट को, आली वाले कॉन्सेप्ट को तसव्वुफ और तजकिया नफ्स में अप्लाई करने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। ठीक है, वो एक हदीस की कॉन्टेक्स्ट बिल्कुल डिफरेंट है, वो एक इल्मी कॉन्टेक्स्ट है, वहां पर ये चीज चलती है। ठीक है, उम्मीद है कि ये बात आपको समझ में आती होगी। ठीक है, तो वस्कुर इस्मा रब्बी का वतबत्तल इलैहि तब्तीला, ये तो माशाल्लाह यहाँ पे एक बड़ा गहरा और तफसीली तसव्वुफ का बयान शुरू होता है, इंशाल्लाह हम वो अगली क्लास में करेंगे, क्लास का टाइम पूरा हो चुका है। ठीक है, कोई अगर जल्दी से किसी को कोई सवाल पूछना हो तो आप मुझसे पूछ लीजिए अभी, क्योंकि अब अगले अगले हफ्ते ही फिर मौका मिलेगा इंशाल्लाह। ओके, अस्सलाम वालेकुम।